खाना से निकाला, उनके चरणों में गिर गई, कहा जी हम आपकी घर की दासी होना चाहती हैं। कृष्ण ने दासी नहीं हमारी रानी बन करके चाहिए, इसने कहा कि सासा विवाह। इस तरह से सभी के लिए, इसलिए जिनको पति पत्नी के रूप में अंगीकार किया है उनके से ही चरण हृदय में धारण कर गया, उन लोगों ने धारण किया और उनके अंगों का कुमकुम कृष्ण के चरणों में रज में मिल गया। ऐसे चरण को क्यों, ये रस युक्त है, इसलिए यही हमारे कामनाओं का विषय है। यदि नहीं होगा एतस्य, हेतु क्या एतस्य, उसमें कह रहे हैं अनवर्चनीय विविध माधुर्य महाउदधि, महोदधि है रस की, महोदधि महाउदधि समुद्र है। देखिए नंदन की स्त्री अर्थात रुक्मिणी देवी, इसका एक और अर्थ भी लगा रहे हैं सिया का, रुक्मिणी देवी को ले लो, इसके द्वारा अन्नरूप प्रसंग अर्थात और सब लोगों का प्रसन्न निरह, यहाँ तक जो बतलाया था श्री लक्ष्मी इत्यादि और सब महिषियों की बात कही थी, रुक्मिणी जी का प्रसंग आने पर ये प्रधान महिषी है ना, इसलिए सबसे अधिक प्रिया हैं, इसलिए और सबका प्रसंग इधर ही रह गया। यदि कृष्ण का चरण कमल इन कुमकुमों से रंजित नहीं है तो होगा क्या, निर्विशेष बन जाएंगे, निर्विशेष, इसलिए ये कह रही हैं। और कोई कामना है, द्रौपदी जी ने पूछा, किस लिए पूछ रही हैं, वो जानती हैं इसका गूढ़ रहस्य, इसलिए और कुरेद करके पूछ रही हैं। यदि कोई कहे पूछे आप क्या चाहते हैं, तो मैं कृष्ण भक्ति चाहता हूँ, कैसी कृष्ण भक्ति, ध्रुव जैसी कृष्ण भक्ति तो नहीं, कैसा प्रहलाद जैसी तो नहीं, फिर पूछा जाए कैसी हनुमान जैसी भक्ति, कहे नहीं कृष्ण भक्ति। तो द्रौपदी जी पूछ रही हैं और आगे बढ़ाकर, तो कैसी तुम बोलो, तो और क्रम से वो बतला रही, एक बार में नहीं बतला रही, इसलिए यहाँ पर ले आए हैं रुक्मिणी तक, किंतु और भी रुक्मिणी भी जिसको चाहती हैं ये पीछे बतलाएंगे। ब्रजंगनागण भी जिसकी वंछा किया करती हैं, प्रजस्त्रियो जद वांछन्ति पुलिंदस्त्रिण विरुद्ध गावश्चार्यतो गोपा पाद प्रसंग महात्मनः। यहाँ पर ब्रजस्त्रियों का प्रसंग अगले श्लोक में आएगा, जद ब्रजस्त्रियो, तो ब्रजस्त्रियों के इसलिए यहाँ पर करें, रुक्मिणी का भी यहाँ पर ठीक नहीं बैठेगा, इसके लिए वो बतला रहे हैं। ब्रजंगनाओं ने जिनकी वंछा की थी, कौन से श्लोक में वंछा की, पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब जरा गई, इसी श्लोक में, इसलिए श्री कृष्ण के चरणों की रज की ही एकमात्र हमें अभिलाषा है। इस प्रकार से ऐसी अभिलाषा का हेतु क्या, परम दुर्लभ होने पर भी यदि किसी के अंदर में एकांतिक लोभ हो जाए, इसके बिना हम कुछ को कुछ नहीं चाहिए, और इसके लिए सबसे बड़ा दुर्लभ साधन क्या है, गोपियों के अनुगत्य में भजन, जिसको चैतन्य महाप्रभु जी ने दिखलाया, इसके अतिरिक्त ये नहीं होने वाला, यह भी सुलभ हो सकता है, इसलिए ये कामना बतलाया गया। इसका हेतु फिर कहते हैं प्रेम का महात्मा प्रकाश करने के लिए, उनका प्रेम महात्मा के प्रभाव से पुलिंद कन्या को भी, पुलिंद कन्या कौन सी है ब्रज में, साधारण सी, कृष्ण के चरणों का मिलना इनके लिए सुलभ नहीं, क्यों, ये गोप कन्याओं के लिए, गोप रमणियों के लिए, किशोरियों के लिए ये संभव है, और ये पुलिंद होकर के उस चीज को ग्रहण कर रही हैं, यह सुलभ हो सकता है। क्यों सुलभ हुआ? सुलभ होने का कारण क्या था? गोपियां जब वहां जाती थी तो उनकी सेवा करती थी ये पुलिंदियां, इसलिए उनके अंदर में लोभ हो गया और इसीलिए सहज रूप में उनको ये प्राप्ति हुई। किंतु डायरेक्ट नहीं हुई, बहुत दूर से घासों पर लगे हुए। इसलिए पुलिंद कन्याओं के भी हृदय में कृष्ण के चरण रज को पाने की अभिलाषा हुई और उन्होंने दूब की घास पर लगे हुए लाल लाल कुमकुम से युक्त कृष्ण के चरण पद रज की को ऐसे निकाल करके अपने समस्त अंगों में लगाया। देखो ये ब्राह्मण पत्नियों के लिए संभव नहीं हुआ, नाग पत्नियों के लिए संभव नहीं हुआ, दूसरे किसी के लिए संभव नहीं हुआ, ये गोपियों के कुछ अनुगत्य के कारण इनको मिल गया। अथवा अथवा आप लोगों के पूज्य होने पर भी किसके, ये रुक्मिणी इत्यादि जो कह रही हैं महिषियां, आप लोगों के पूज्य होने पर भी जब ये वृंदावन में गोचारण करते हैं, गोप सब सब जितने भी गोप हैं उनका पद संवाहन करते हैं और उनकी धूलि को के साथ में कृष्ण के चरण कमलों की का संवाहन करते हैं, कौन? ये सखा लोग। अतएव ये उनका कारुण्य है, कारुण्य माने ये करुणा है, ये सहज रूप में उन गोपों के गोदी में अपने सिर को रख दिया, अपने पैरों को रख दिया और उनके चरण कमलों की रज को सहज ही बैठे हुए वो पा रहे हैं, उनके अंगों में भी लपेट रहे हैं। हम लोग उसी की चाहते हैं। यहाँ पर कृष्ण की परम उदारता पराकाष्ठा है, अर्थात प्रेम महात्मा, प्रेम की ऐसी महिमा है जिसके द्वारा सहज ही पाए जाते हैं। यदि ऐसा उस कोटि का प्रेम यदि हो तो सहज रूप में वो मिल सकते हैं। जात्यादि महात्म में जाति आदि की महिमा से ब्राह्मणों से नहीं मिलेंगे, क्षत्रियाणियों से ये नहीं मिलेंगे, ब्रह्मा इत्यादि की पत्नी इत्यादि से सरस्वती इत्यादि को नहीं मिलेंगे, वो जो अवतार हैं उनकी स्त्रियों से भी ये नहीं मिलेंगे, गोपियों के अनुगत्य में भजन करने से ही ये मिल सकते हैं, ऐसे प्रेम के द्वारा होगा। तात्पर्य यह कि श्री कुछ कुंकुम युक्तत्व रूप प्रार्थ, अर्थात श्री के श्री अंगों का कुंकुम से युक्त उनके पदरज की हम अभिलाषा करते हैं। इसके लिए फिर दूसरा एक अर्थ बतला रहे हैं, इसके अतिरिक्त हम कुछ भी प्रार्थना नहीं करते। यहाँ श्री शब्द का अर्थ क्या लेंगे, ये बात है द्वारका की, इसमें भी बतलाया है पहले। बैकुंठ की जो लक्ष्मियां हैं इनसे भी श्रेष्ठ हैं द्वारका की महिषियां। बैकुंठादपि सोदरात्मता द्वारावती जा प्रिया जत्र सत सी नंद निंदी पट्ट महिष बिंदे, कोटि कोटि लक्ष्मियां भी इनके चरणों की सेवा करती हैं, इनके प्रेम की महिमा ऐसी है। इसे लक्ष्मी का चरण रज नहीं हो सकता, वो चरण रज का विषय नहीं। यदि ये कुंकुम न रहे तो आत्मा रामत्व इत्यादि प्रसक्ति हेतु उदासीन्य संभव होता, अर्थात आत्मा राम लोग जैसे योगी है ना, वो ये सबकी आकांक्षा नहीं करते, इसलिए उसके प्रति इनका उदासीन्य हो जाता। किनका? महिषियों का। यदि रज से युक्त नहीं है तो वैष्णव जो हैं, रसिक वैष्णव हैं, भावुक हैं, उस चरण से कोई भी संबंध नहीं। इसलिए ये कुछ कुमकुम होना चाहिए, किंतु परम रसिकता आदि यहाँ पर अभिप्रेत है। परम रसिकता, कृष्ण बड़े रसिक हैं, रसिक सागर हैं, उनकी रसिकता भरी ये चीज़ें होनी चाहिए। इस विषय में और बोलना अनावश्यक है। तात्पर्य यह कि महिषियाँ राधिका के सिंह कुमकुम से चरणों में लिप्त पदराजा की प्रार्थना यहाँ पर कर रही हैं। क्यों? इसका ये तात्पर्य अजी, वहाँ पर जो जितनी भी 16,108 महिषियाँ थीं, तो 107 से सभी से श्रेष्ठ हैं रुक्मिणी जी। तो रुक्मिणी जी तो हैं, उनकी चरण की सेवा करती हैं, तो उनके अंगों के कुमकुम से रंगे हुए कृष्ण के चरण कमलों को वो चाह रही हैं, नहीं कि तो वहाँ पर तो ही हैं, इसलिए वो अर्थ नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर सी शब्द का तात्पर्य रुक्मिणी नहीं हो सकता। किंतु ये निश्चय ही यहाँ सी शब्द से यदि अभिप्रेत होती तो वही जो मैंने बताया, तब तो वहाँ पर वो चीज़ सुलभ ही था, उनको वो मिल ही जाता, किंतु वो नहीं मिला, वो उनको नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पर सी शब्द का प्रसिद्ध अर्थ जो लक्ष्मी है ये रुक्मिणी भी नहीं होंगी, वृंदावन बिहारी के चरण कमलों के रेणु की कामना सुनी जाती है। यहाँ पर जयश्री श्रीमती उनकी भी मुकुटमणि श्री राधिका ही श्री हैं ऐसा समझा जाए। यहाँ पर श्री शब्द का अर्थ श्रीमती राधिका से है। रुक्मिणी इत्यादि जितने भी महिषियाँ हैं उन्हीं के चरणों कमलों की रज उनके श्री अंगों से मिले हुए रज को चाहती हैं। वे कृष्ण के चरणों का प्रभाव समझती हैं, कैसे गोपियों को रात में सोते हुए स्मरण करते हैं। 16,000 महर्षि में से भी किसी को भी स्मरण नहीं करते, स्मरण किसको करते हैं? राधे राधे ललिते इत्यादि का यह सब समय उच्चारण करके रोते हैं, बिस्तर का सारा बिस्तर भीग जाता है। बल्कि कृष्ण ने भी कहा है एक जगह, यदि गोपियां ना चाहें तो तुम सब लोगों को एक क्षण में मैं सबका प्रत्याग कर सकता हूं। इसलिए ब्रज के बिना अन्यत्र ऐसे भगवान की प्राप्ति कभी भी संभव नहीं है। इसलिए ऐसे ही चरण रज को जिसमें गोपियों का श्रीअंग का कुंकुम मिश्रित हो कृष्ण के चरणों की आकांक्षा कर रही हैं ये महिषियां भी। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, ये तात्पर्य क्या जो पहले कहा, ये और कुछ नहीं कोई चाहती भक्त लोग, तो ये ऐसा ही चाहते हैं सभी भक्त लोग, उस ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के चरण रज के अतिरिक्त और किसी चीज की आकांक्षा नहीं करते। यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ, इससे बढ़कर के और कोई पुरुषार्थ नहीं। उनके जितने प्रकार के लक्षण निर्दिष्ट हैं सब इसी के अंदर में समा जाते हैं, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं। इससे श्रेष्ठ भक्ति विलास वैभव रूप हेतु परम महत्व पराकाष्ठा प्राप्त सुख विशेष उदयात्मक पुरुषार्थ विशेष संपादित होता है। मन तात्पर्य क्या? इसमें भक्ति का विलास है। भक्ति माने यहाँ समझो जो प्रेम, प्रेम से भी समझ लो स्नेह मान प्रणय महाभाव, महाभाव से भी ऊपर चढ़ जाओ, उनका यहाँ पर वैभव है इन गोपियों के साथ में। इसलिए वो चाहते हैं कि गोपियों का अनुगत रूप जो प्रेम है उसी की प्राप्ति, और हम कुछ नहीं चाहते हैं इसके अतिरिक्त। यही परम पुरुषार्थ, इसे पढ़कर के कोई पुरुषार्थ नहीं। सनातन गोस्वामी इस टीका के द्वारा यही कहते हैं। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि इस श्लोक का मैंने दिग्दर्शन कराया, अपने ही श्लोक लिखा और उसका अर्थ भी अपने आप कर रहे हैं, फिर भी उसे तृप्त नहीं है। कहते हैं कि मैंने इस श्लोक का केवल अर्थ का थोड़ा सा दिग्दर्शन किया, अधिक मैं नहीं बोल सका, और भी कह सकते थे, बहुत कुछ है कहने का। उनके किसी एक लीला विलास को ले लेते और फिर उसकी व्याख्या करके बतलाते, किंतु देखा जाना अधिकारी लोग हैं, उनके सामने इसको व्यक्त नहीं करना चाहिए। ब्रज जातीय रसज्ञ जो हैं, ब्रज रसिक हैं, वो गोपीजन के बल्लभ, गोपीजन बल्लभ के चरणों के प्रति भक्ति जो कोई पर पुरुषार्थ बतलाते हैं, इससे बढ़कर के और कोई पुरुषार्थ नहीं है जगत। इसलिए स्वर्ग मोक्ष किंबा वैकुंठ धाम की भी कामना नहीं करते। यदि एकमात्र कृष्ण के ऐसे चरणों की भक्ति कोई चाहता है तो साधारण चीजों में उनका मन रम सकता है, विषयों में, संसार में, किसी भोग में। किंतु यदि रमता है और ऐसा चाहते भी हैं तो क्या होगा, मतलब कि वो नहीं चाहते। हम वैसा चाहते हैं और फिर भी संसार की इन वस्तुओं में हम लोग लग जाते हैं, इसी का नाम है वैराग्य भाई। वो प्रेम का थोड़ा सा भी लोभ होगा तो संसार का समस्त जो तो वैभव भोग इत्यादि है उससे वैराग्य हो जाए सहज रूप में। यदि किसी कारण से यदि कोई चाहता भी है, मिलेगा नहीं, मिलेगा कब, वैसा भजन हो, उनका अनुगत्य हो, तभी मिल सकता है। एकांतिक भक्त संसार के सारे वैभवों से उदासीन रहकर एकांतिक रूप में बस उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते, ब्रजभाव की भक्ति, कैवल्य मुक्ति तक की कामना नहीं करते। समस्त आकांक्षाओं को, अभिलाषाओं का त्याग कर देते हैं और सब प्रकार से निरपेक्ष रह करके भगवान के संतोष के लिए ही वो भजन साधन करते हैं गोपियों के अनुगत्य में, तब इस चीज को पाया जा सकता है। बतला रहे हैं ब्रह्मा जी ने कहा है एक जगह, मैं वृंदावन में गोपियों की चरण धूलि को प्राप्त करने के लिए पहले 60,000 वर्ष तक मैंने तपस्या की, एक दो वर्ष नहीं 60,000। ब्रह्मा स्वयं कह रहे हैं, उन्होंने कहा है, कहाँ का भी ये कोट तो नहीं दिया है, कहीं दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा है मैंने 60,000, हम लोगों का कितना वर्ष हुआ, कितना हजार वर्ष हो गया, हम तो चाहते हैं जब अभी मिल जाए, कितना हजार वर्ष, अब क्या तपस्या क्या की, खा पी करके खूब आराम के साथ में 15 घंटा सोते हैं,
पता नहीं कितने हजार हजार वीडियो पे पता
है। हाँ हाँ पता है, इसलिए 60,000 वर्ष तपस्या की तथापि उनके चरण रेणु को मैं प्राप्त नहीं कर सका। ब्रह्मा जी का जानते ही जानंतु, वो जानते हैं तो जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। और हम लोग सब कुछ जान करके परम पंडित हो जाते हैं, किसी की जरूरत, अनुगत्य की जरूरत नहीं, कोई तपस्या की भी जरूरत नहीं होती। यह सुन करके भृगु ऋषि महर्षि लोग आश्चर्य से पूछने लगे, भगवान भवादृश ईश्वर के यदि कृष्ण भक्तेर पदरेणु ग्रहण करता है, यदि आप जैसे ईश्वर हैं, ब्रह्मा जी तो ईश्वर हैं एक तरह से, आप जैसे ईश्वर को भी यदि कृष्ण के चरण कमलों में गोपाल साधारण उसके चरण रोज पदरेणु को कृष्ण भक्त, कृष्ण के जो भक्त हैं गोपियां उनके चरण धूलि के लिए इतनी 60,000 वर्ष तपस्या करती है होनी होती है, तो नारद इत्यादि बहुत से भक्त हैं, उनका त्याग करके आपने गोपियों की पदरेणु की ग्रहण करने के लिए अभी लाशा करके 60,000 तपस्या किस लिए की, आप तो नारद इत्यादि बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, तो उनके लिए तपस्या करते, उन गोपियों के लिए, स्त्रियों के लिए, स्त्रियों की चरण कमल के लिए क्यों, आप उनकी रज के लिए क्यों प्रार्थना की, स्त्रियां तो उपेक्षित होती हैं साधारण दृष्टि, तो उनके चरण की धूलि के क्यों। इस विषय में हम लोग को संदेह हो रहा है, इसका कारण क्या है बतलाइए। ब्रह्मा जी ने इसके उत्तर में कहा, बेटों पुत्रों, ब्रज सुंदरियां सामान्य स्त्री नहीं है, वे महालक्ष्मी की अपेक्षा भी श्रेष्ठ हैं। शिव, अनंत देव, लक्ष्मी और मैं ब्रह्मा, जिनकी महिमा कुछ भी अवगत नहीं है, कुछ भी नहीं उनकी महिमा को जानते हैं उन गोपियों की, इसलिए हम उनके चरण रेणु के लिए तपस्या किया करते हैं शंकर इत्यादि सभी। शंकर तो कभी गोपी रूप ही धारण कर लिया, ब्रह्मा को शायद अभी तक मिला है कि नहीं मैं नहीं जानता, किंतु लालसा है। बृहद बामन पुराण का ये सब श्लोक है, बृहद बामन पुराण का यह वृतांत है। उद्धव जी ने क्या कहा था? अच्छा, उद्धव बड़े हैं कि ब्रह्मा जी बड़े हैं? कौन बड़े हैं? शंकर जी बड़े हैं ना, उद्धव जी बड़े हैं? उद्धव जी बड़े हैं, ये उद्धव जी भी कह रहे हैं। उन्होंने श्लोक पता, आशामहो चरण रेण जुषामहम वंदे नंद ब्रज इस्तीर्णं पाद रेणुम अभिक्षणशः। गोपियों का प्रेम माधुर्य दर्शन करके स्तंभित हो गए। अरे महिषियां तो उनके पास ही में थी, द्वारका में भी थी, उनके साथ में उनके चरण रज की प्रार्थना नहीं की, किसके लिए की? वंदे नंद ब्रज इस्तीर्णं, द्वारका में रह करके। और वहां से उद्धव जी कह रहे हैं, गोपियों की चरण धेनु की एक चरण धूलि की वंदना करता। इसलिए यहां पर श्री शब्द का तात्पर्य अर्थ वो द्वारका की महिषी या रुक्मणी नहीं होगा। इसलिए क्योंकि गोपियों के अंदर में कृष्ण के प्रति अनुराग की पराकाष्ठा है। गोपियों में कृष्ण के प्रति जैसा अनुराग है किसी का नहीं है, और उन गोपियों में भी श्रीमती राधिका जी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो पराकाष्ठा। कृष्ण प्रेम रस का आस्वादन करना चाहते हैं, आस्वादक है, बड़े रसिक है। इसीलिए कृष्ण इन गोपियों की पराकाष्ठा देख करके इनके अंदर में प्रेम है उसी रस का आस्वादन करना चाहते हैं। प्रश्न और भी हो सकता है। ये महिषियां रुक्मिणी सत्यभामा कृष्ण की द्वारका की रहने वाली महिषियां हैं, गृहिणी हैं। गोपियां तो गृहिणी नहीं, गृहिणी को किस प्रकार से अपने पति की सब समय सेवा करने का सुयोग मिलता है, और उसको कोई कह नहीं सकता, लाइसेंस शुदा है, लाइसेंस के साथ। गोपियों को तो कोई लाइसेंस नहीं है, कोई लाइसेंस कुछ, इनको लाइसेंस मिला समाज का कोई भी व्यक्ति अंगुली नहीं उठा सकता, जिस रूप में उनकी सेवा कर सकती हूँ हो करके भी। क्यों गोपियों की चरण रज की अभिलाषा करती हैं रुक्मिणी प्रभति? क्यों है? जदियो पति के रूप में गदाभृत कृष्ण, गदाभृत माने क्या है? और एक गदाभृत, भृत माने पालन पोषण करना, अपने छोटे भैया का पालन पोषण करते हैं शायद ये, या गदा को धारण करना, भृत मैंने धारण करने वाला भी, और बंशी को धारण करने, पीछे अर्थ बतलाएंगे ये सब। यद्यपि पति के रूप में उस कृष्ण को उन्होंने पाया है वहां पर, और अपने अपने सिर पर उनको अपहन करती हैं कृष्ण के चरणों को, तथापि उनसे भी लक्षण और कोई भाव है गोपियों के अंदर में जो गोपियों के अंग कुमकुम को प्राप्त करने की संपत्ति उसमें एक ऐसी विशेष है जो ये भी उसके लिए मुग्ध हो जाती है, इसको चाहती है, इसकी वंछा करने लगती है। अथापो अप्ययम जद रेणु संकेत ध्वनिना पशुन समाहूय विचित्रेण मुखम शब्देन केनचित। अब उस कथा प्रसंग में आइए। अब स्वरूप को तो अपने समान बना दिया उस ब्राह्मण को, कैसे बनाया? यहां पर उसकी सिद्धि प्राप्त हुई, उसके अंदर में जो कषाय था उसको दूर किया। अभी तक वो अपने को ब्राह्मण समझ रहा था कि ब्राह्मण होकर के उसने इस सब कथा को सुना था, लालसा जगी और उन अपने गुरु की कृपा भी पाई। पाने के बाद में वहां पर पहुंचा, कृष्ण के निकट। अब उसको प्रकट लीला में भी कह सकते हैं, कृष्ण का दर्शन किया प्रकट लीला में, वहां पर लीला हो रही है, और दर्शन करके बेहोश भी हो गया, किंतु अभी ब्राह्मण का अभिमान नहीं गया, क्योंकि ये शरीर अभी उसी का था, यही कलमश है। ये कैसे गया? गया कैसे? कृष्ण ने अपने आप जब अलंकृत उसको किया, अपने कपड़े पहना दिए, अपनी मालाएं पहना दी, तो वो अपना भाव ये जो गोप कुमार का हो देंगे कि नहीं, उन्होंने वो भी दे दिया। इसलिए तत्स्वरूपता वो गोप होकर के सखा हो गया उनका, और पूर्ण रूप से कृतार्थ हो गया। बाकी जो चीज थी जो गुरु ने नहीं दिया था, इसको भी कृष्ण ने परिपूर्ण कर दिया। अनंतर अब उनको साथ लिया और बोले, अब हमारे साथ में विलास में सम्मिलित हमारी सखा बन करके जो जो हम क्रियाएं करते हैं उसके साथ में, तो हमारे साथ में विचरण करो। कृष्ण ने अपने हाथों से उनका, बाएं हाथ से उनका दाहिना हाथ पकड़ लिया और लेकर के चल पड़े श्री कृष्ण वेणी ध्वनि की, संकेत करके। संकेत क्या संकेत किया उनको? गायों को एकत्र करना है, एकत्र करके पानी पिलाना है। आह्वान किया, धबरी, श्यामली, पद्मगंधा इत्यादि गायों का नाम लेने लगे। लाखों जितने भी गायें थी सब एक तरह से समाहूत होकर के वहां पर उपस्थित हो गई। कृष्ण ने मुख को ऐसे बनाकर चू चू, धीरी धीरी, निरी निरी, जब पानी पी लिया तो कहते तीरी तीरी, फिर मैं उठ जाओ। उनके इस मुख भंगी को सुनकर के, शब्दों को सुनकर के, सांकेतिक शब्दों को सुनकर गाय ने धीरे धीरे पानी पीना पिया, और पानी पीकर खड़ी थी, जब उन्होंने तीरी तीरी किया तो वो तीर में आ गई। फिर धीरे धीरे, माने धीरे धीरे चलो, सभी सामूहिक रूप में, कोई भी इधर उधर नहीं, चलने लगे। लाखों गायों का, माने दस गायों को एक अत्र लेकर के चलना सहज नहीं, और ये लाखों करोड़ों गायों को एक साथ में लेकर के चल रहे हैं वेणु ध्वनि के द्वारा। किसी सुखमय स्थान में पशुओं को निद्ध कर दिया, उनको खड़ा कर दिया, सुशीतल बंसी बट की छाया में या बांडीर बट की छाया में कोटि कोटि गायों को बड़े सुख से खड़ा कर दिया। कोई बैठ गई, कोई खड़ी हो गई और पागुर करने लगी बड़े सुख से, आनंद से। स्वरूप और जन शर्मा, स्वरूप उनके गुरु और जन शर्मा ये, और सखा मंडली के सहित अग्रज को लेकर के जल विहार करने के लिए चल पड़े। कितना बजा? कभी किसी को पराजित कर रहे हैं, किसी से पराजित हो रहे हैं, किसी को पराजित कर रहे हैं, जल उलीच रहे हैं दूसरों पर, वो उनके ऊपर में। कभी हार जाते हैं और कभी जीत जाते हैं। जब हार जाते हैं तो सखाओं को बड़ा उत्साह होता है। कृष्ण जानबूझ करके हार करके भी इनकी जीत होती है। इनका यह देख करके, ये भी स्वरूप और ये जन शर्मा थे, ये भी लग गए सखा। ये इस प्रकार से जमुना के प्रवाह में सखाओं के साथ में मधुर वाद्य बजाते। कैसे? कपड़ा को भिजा दिया और उसके ऊपर में जाल पर रख दिया, वो फूल गया, और उसके अंदर में ताली बजा रहे हैं, मुख से बजा रहे हैं, वो बहुत सुंदर वाद्य बजता है। जलमंडू कभी यमुना के स्रोत में अनुकूल में तैर रहे हैं और कभी विपरीत तैर रहे हैं, पैरों को एकदम ऐसे एकदम सो गए पानी के ऊपर और चल रहे हैं, तैर रहे हैं। कभी उजान, कभी उल्टे होकर के, कभी सीधे इस तरह से, कभी पैरों से चल रहे हैं, कभी ऐसे छपा छप मारते हुए, कभी कुछ इस प्रकार से सखाओं को प्रसन्न करते हुए अपने आप। ये सख्य रस है, इस सख्य रस में उनको मुग्ध कर दिया। किसी समय कृष्ण यमुना के नीले जल में कहीं कमल के डंडियों में अपने को छिपा दिया, कमल नाम में, कमल जैसे निकलते हैं उनकी डंडियों में एकदम कहीं से छिप गए। कौतिकी होकर के बहुत देर तक उसमें दम साधे हुए रह गए, अब कोई नहीं उनको लक्ष्य कर सका। अब जिनके जीवन ही कृष्ण है उनको नहीं देख करके सभी लोग खोजने लगे, कहाँ गए कहाँ गए, कहीं डूब तो नहीं गए क्या, क्या हुआ, सब लोग एकदम भयभीत हो गए। उसमें महामार्ग आर्त होकर के व्यक्तता के साथ में सभी लोग रोदन करने लगे। इसी समय कृष्ण झट उससे निकल आए, जहाँ पर कमल के फूल खिले हुए हैं उनमें से अपने मुंह को निकाला और हर्ष करते हुए सखाओं के साथ में सूर्य से मिले थे, इनको भी बड़ा आनंद हुआ। इस तरह से कौतुक करते हुए तरह तरह के विहार इत्यादि सब कर। आज यहीं तक रहे, कल हम लोग इसके बाद में कथा सुनाएंगे। वंशा कल्पतरु भैस्य कृपा, सखा रस में इतना रसास्वादन है तो माति वात्सल्य रस में कितना होगा, और उससे कल्पना कीजिए गोपियों का। तिरुभाव है वैसे भागवत का आविर्भाव और तिरुभाव होता है, उनको कोई बनाने वाला रचने वाला लिखने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं, वो खुद ही जैसे कृष्ण स्वयं है ऐसे ये भागवत। गीता को किसने लिखा भाई, तुम बतलाओ तो, गीता किसने लिखी है? फिर वैसे ही प्रकाश किया, पुराण इत्यादि सब नित्य हैं, ऐसा ही समझो। कृष्ण के समान ये सब चीजें हैं, इनका कोई लिखने वाला नहीं है, स्वयं ही इसको समय समय पर प्रकाशित अपने आप होते हैं और अपने आप फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। अच्छा कोई बतलाओ तो कहाँ तक हुआ था, चिन्मय बतलाओ, अचिंत्य कल कहाँ तक प्रसंग हुआ था? तो इसका मतलब ये सुनते नहीं है, कोई सुनते नहीं। आप कृष्ण कहे सखाओं के साथ में दोपहर में गायों को पेड़ों की छैया में रखकर आप भोजन इत्यादि की का वर्णन कर रहे हैं। पहले स्नान का वर्णन कीजिए, कैसे बड़ी क्रीड़ा के साथ में विलास के साथ में स्नान कर और फिर इसके बाद में दोपहर का भोजन ग्रहण कर, ये सब किस लिए वर्णन कर रहे हैं? वर्णन करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि इन कथाओं को सुन करके पढ़कर हरिनाम करते समय दोपहर में जो हरिनाम करेंगे इन लीलाओं का स्मरण करें, सखा सखा युक्त जो सखा भाव वाले। कोई भी सांसारिक बात हरिनाम करते समय में ना आए, हम लोग ऐसा हरिनाम नहीं करते, किंतु रूप सनातन जी ऐसा ही करते, षड गोस्वामी लोग या हमारी परंपरा में जितने भी आचार्य तन्नाम रूप चरितादि सुकृत नाम क्रमेण रसना मनसी लोग नाम करते समय भगवान की तत्त समय की लीलाओं का स्मरण करते वे हरिनाम करते, करते करते कुछ दिनों में आवेश हो जाएगा, और जिस समय आवेश हो जाएगा उस समय हरिनाम छूटेगा नहीं और तरह तरह की विचित्र लीलाएं अपने आप हृदय में स्फूर्ति होंगी, उसमें स्मरण करने की जरूरत नहीं होगी कष्ट से, अभी स्मरण करने में मन ही में नहीं आएगा और उसमें अपने आप धारा प्रवाह से वो सब चीजें आती। मध्यान्निकम भोजनम अत्र कर्तुम विस्तृत कृष्णानुकूलिने मनोज्ञे गोपैः समं मंगलेशो निविष्टे न्यवेशयत् सो अग्रजम् एव मध्ये। दोपहर हो गया, 12 बज गया। अब सभी लोग भोजन करने के लिए यमुना के किनारे उपकुल में, जहाँ पर सुंदर सुंदर वन है, उपवन है, सुंदर सुंदर छाँ है, छाया है, यमुना के विस्तीर्ण उपवन में ये लोग पहुँचे। गायों को एक जगह छाया में बैठा दिया, वो बैठ करके पागुल करने लगे, और ये सब सारे गोपाल बालक कृष्ण को मध्य में रखकर मंडलाकार रूप में, एक मंडली, दो मंडली, तीन मंडली, इतर से सौवीं, हजारवीं, लाखवीं मंडली, पाव दूर तक लाखों सखा लोग बैठ गए। उस समय में विस्तीर्ण कृष्णा पुली ने, कृष्णा यमुना, यमुना के विस्तीर्ण क्यों, सखा लोग दो एक तो है नहीं, लाखों आदमी जब बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे। हम लोगों में 8-10 हजार आदमी होते हैं, 15 हजार आदमी होते हैं,
गंगा के किनारे
कहीं जगह नहीं मिलती है बैठने के लिए, और ये लाखों सखा लोग बैठे हुए हैं, इसलिए विस्तीर्ण इलाका चाहिए। मनोज्ञ, मनोज्ञ मैंने कई कदम्ब के पेड़ हैं, छैयाँ लगी है, कई तमाल के वृक्ष हैं, कई आम्र वृक्ष हैं, कई कटहल के हैं, कहीं कुछ हैं, कहीं कुछ हैं, सारे फलों के वृक्षों से लदा हुआ वो वृंदावन भूमि है। ऐसे मनुष्य गोपय समंग मंगलेशो, मंगल के ईश कौन है, कृष्णचंद्र जी, निविष्ट, भोजन करने में निविष्ट हो गए, सखा लोग भी निविष्ट हो गए, ये भी नवेशयत सो अग्रजम एवम। कभी अपने आप, कभी बलदेव जी के साथ में परिवेशन भी करते हैं, अपने भी खा रहे हैं, उनको भी खिला रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी हंसा रहे हैं। लाखों जो मंडलियाँ हुई, वो उसमें मंडली में कृष्ण के पीछे भी जो बैठने वाले हैं, वो देख रहे हैं कि मैं कृष्ण के सम्मुख हूँ। अगल बगल में जो बैठने वाले, वो भी देख रहे हैं कि कृष्ण के ही समीप हूँ। बहुत दूर बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि कृष्ण के समीप, कृष्ण के साथ में मैं ही खा रहा हूँ, मैं ही हंसी कर रहा हूँ, दिल भी कर रहा हूँ, कृष्ण हमारे साथ ही में खाओ खिला। ये कैसे संभव है, योग माया के द्वारा ये संभव है सब कुछ। कृष्ण बड़ी फुर्ती के साथ में यहाँ से वहाँ भी जाते हैं, और सभी लोग देख नहीं पाते, ये भी ऐसा है। अब कृष्ण बीच में बैठे हैं और सब लोग सखाओं को खिला रहे हैं, खा रहे हैं, ये भी एक तरह का ऐश्वर्य है, किंतु किसी ने नहीं देखा ऐसा, इसलिए ऐश्वर्य नहीं है। ऐश्वर्य तो है किनके लिए, नारद इत्यादि के, किंतु गोपालकों के लिए ऐसा ऐश्वर्य नहीं, क्यों, वो सभी यही देख रहे हैं कि हम कृष्ण के साथ में बैठे हुए खा रहे हैं। जो ध्यान करेगा ना इस लीलाओं का और हरिनाम करेगा, वो भी इस दल में शामिल हो जाएगा, वो भी देखा जो मैं भी कृष्ण के साथ में खा रहा हूँ, खिला रहा हूँ। जो जैसा जिस रस का उपासक है, ऐसे ही लीलाओं का स्मरण करें। इसी प्रकार से हमारे गोस्वामी लोग गोपी भाव से उसमें आविष्ट होकर के दिन रात अष्ट प्रहर अपने भजन के स्थान से हटते नहीं थे, मन भी उगता नहीं था, खाने की इच्छा नहीं हुई, पानी पीने की भी इच्छा नहीं हुई, उसमें लगे हुए। एक बार तो श्रीनिवास आचार्य तीन रात, दिन और रात बस बैठे ही रह गए। लोगों ने समझा जे मर गए, क्या हो गया, तो उनके शिष्य थे रामचंद्र कबीराज, उनके पास में गए, वो जल्दी से आकर के देखा, नहीं जीवित मरे तो नहीं है, ये तो समाधिस्थ हैं, इसमें ये कृष्ण लीला में प्रविष्ट हो गए, शरीर यहाँ पर पड़ा, बस अपने भी समाधिस्थ होकर कहा जे अभी ये शरीर को छेड़ना मत, जब तक हम नहीं लौटते हैं तब तक यहीं पर रखा कर, और वृंदावन में चले। वृंदावन में खोजा, पता लगाया कि कहाँ हैं, पता चला कि यमुना में विहार कर रहे हैं, बस वहाँ पर पहुँचे, देखा सभी लोग कोई एक चीज़ खोजने में व्यस्त हैं, ये भी सखी रूप में वहाँ पर उपस्थित होकर के और डुबकी लगाई, और उनके हाथों में एक नाक का
बेशर निकला, कहाँ मिला? कमल की जड़ में लिफ्ट मिला। वो खोजते खोजते सभी लोग हार गए, किसी को नहीं मिला, और वो कमल की जड़ में वो फंसा हुआ, न नीचे मिट्टी में है न ऊपर है, बीच में ही अटका हुआ। बस उनके हाथ में मिल गया और लेकर के इन्होंने किसको दिया? गुरु रूपी सखी उनको दिया, उन्होंने रूपमंजरी को दिया, उन्होंने विशाखा जी को दिया, उन्होंने दिया ललिता जी, ललिता जी ने लाकर कहा जी किसने पाया? तो उन्होंने कहा जी ये सखी। बस उसको पुरस्कार दिया। इसके बाद में लीला समाप्त हो गई, बस वहाँ से लौट करके इस शरीर में ऐसे आविष्ट हो गया। ये लोग सिद्ध महात्मा, कृष्णदास, कविराज गोस्वामी, रूप सनातन इत्यादि सभी सिद्ध महात्मा, हम लोग उन्हीं के पद पर चले। इसलिए नाम करते 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 आदमी आविष्ट हो जाए साथ, जब तक आवेश नहीं तब तक भजन नहीं। जैसे श्रवण में आवेश हो जाए, कीर्तन में आवेश हो जाए, कीर्तन में आवेश हो जाए, और सुनते हुए स्मरण, स्मरण करते ही आवेश हो जाए, शरीर की शुद्ध भी नहीं। ये सब उत्तम महाभागवत, मध्यम भागवत चेष्टा करके उनका स्मरण करता है, किंतु आविष्ट उतना नहीं हो पाता। जब वो उत्तम अधिकारी जैसा होने लगता है तब आविष्ट, कनिष्ठ अधिकारी जो है उनसे तो ऐसा कोई संबंध नहीं। कनिष्ठ मध्यम में भी मध्यम, कनिष्ठ मध्यम उत्तम, कनिष्ठ में जो उत्तम है ये सब सर्वश्रेष्ठ, और मध्यम में मध्यम जो है इनका चिंतन करने की चेष्टा करेंगे किंतु उनका होगा बाधा युक्त, और इनके अंदर में भी स्फूर्ति नहीं होगी मध्यम के जो कनिष्ठ है, बहुत चेष्टा करने पर याद होगी फिर भूल जाएंगे। मध्यम कौन है? वैष्णवों के जो प्रकार हैं वो जान करके उत्तम मध्यम कनिष्ठ वैष्णवों का विचार कर सकते हैं, ये मध्यम है, ये ऊंच है, कनिष्ठ है, ये विचार कर सकते हैं। सिद्धांत तत्व का ज्ञान उनमें आया है, कृष्ण तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, भक्ति तत्व, धाम तत्व, ये सब का विवेचन जिनके हृदय में उपस्थित हो गया, विचार कर सकते हैं, इनका नाम मध्यम। और उत्तम भागवत क्या? ये सिद्धांत तत्व ज्ञान भी और दृढ़ श्रद्धा भी, वो लोग उत्पन्न, कनिष्ठों की श्रद्धा लप लपाती है, लप लपाना मैंने प्रतीत जैसे हवा के झोंके में कभी इधर उधर कभी बुझ भी जाता है, ऐसे कनिष्ठ लोग अभी हैं, कोई डांट फांट दिया तो घर छोड़ करके मठ मंदिर साधुओं का संग छोड़ करके घर में चले जाए, ये सब है कनिष्ठ अधिकारी। अब सुनिए फिर यहाँ पर मध्यान्ह सनातन गोस्वामी टीका में बता रहे, मध्यान्ह काल में भोजन, ये जैसे हम लोगों का है करीब करीब तीन बार भोजन होता है, सवेरे कलेवा होता है ना, दोपहर का और रात्रि में, शाम को कुछ थोड़ा सा ये ले सकते, किंतु वो भोजन के अंतर्गत में परिगणित नहीं होता। शाम को, शाम को कब? हम लोग का ये ठीक है, हम लोग की जो पद्धति हम लोगों के मठों में गौड़ियों मठों में चलती है वो ठीक है, कोई कि रात को खाते ही नहीं, बहुत से ऐसे साधक जो रात में नहीं है। अब हम देखेंगे जी कृष्ण कब कब क्या लेते हैं, सवेरे में कलेवा करके यशोदा मैया उनको खिला देती हैं और वो जंगल में गौवा चराने के लिए चले जाते हैं, फिर दोपहर में क्या खाते हैं, मैया भरपेट भोजन के लिए व्यवस्था करके भेज देती है जंगल वहाँ पर खाते हैं। और फिर लौट करके वहाँ से शाम को गैया इत्यादि का दोहन करके और खूब सुंदर से स्नान करके तब उपानंद नंद महाराज और जितने उनके भैया हैं, जितने उनके पड़ोसी इत्यादि हैं, सबको लेकर के रात में बैठते हैं भोजन करते हैं। उस समय भोजन का एक रंग ही अलग तरह का, साढ़े सात आठ आठ साढ़े आठ तक भोजन करके नंद बाबा के दरबार में बैठ जाते हैं और वहाँ पर स्निग्धकंठ मधुकंठ तरह तरह की कथाएँ सुनाते हैं, मानो आज ही ये लीला संघटित हुई। और थोड़े देर रहने के बाद जो यशोदा जी बुलाती हैं बेटे, जैसे गैया डकारती हैं बिना बछड़े के, ऐसे डकार करके उनको बुलवाती हैं और अपने बिस्तर पर लेकर के सुला देते हैं, 9:30-10 बजे के अंदर में सो जाते हैं। ये कार्यक्रम नहीं, दोपहर में वही भोजन के बाद में सवेरे कलेवा करके, पूरा कलेवा करते हैं, थोड़ा नहीं पूरा कलेवा, 9 बजे के करीब में पूरा कलेवा, बल्कि दोपहर वाला कम होता है, और इसी समय में भोजन करके थोड़ा सा कितना 8 घंटा 15 मिनट 10 मिनट ये विश्राम। इसलिए हम लोगों से प्रतिज्ञा कराई जाती है जो ब्रह्मचारियों को माँ दिवा स्वापसी दिन में मत सो, और हमारे ब्रह्मचारी जी दोपहर में देखता हूँ तो कोई किसी का पता नहीं कहाँ है कहाँ है। पहले घर नहीं था तो वो अच्छा था, सब लोग हॉल में बाध्य रहते थे, अब सभी लोग आराम के साथ, अब घर में पंखे लग गए जहाँ पर भी नहीं थे, आराम से अब कूलर भी आ गया है, बड़े आराम के साथ में भोजन के बाद में 12 घंटा विश्राम करेंगे। 12 घंटा कितना होता है विश्राम करते हैं, और रात में भी 12 घंटा। दोपहर में मत सो, यदि भजन करना चाहते हो रोगी लोगों को छोड़ दो, असमर्थों को, अधिक से अधिक 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट विश्राम करो, वो भी सो मत, और इसके बाद में हरि कथा अनुशीलन करो, ग्रंथ पढ़ो, तब भजन होगा। बस कीर्तन के समय में जितने काम आ गए कीर्तन के समय में सवेरे और पाठ के समय में, ये भजन विरोधी है, इसलिए इन लीलाओं को दिया गया। जैसे जैसे ये लीलाएं हैं उसी रूप में हम लोग अपना साधन भजन